कृष्ण आत्मा का मधुर पाठ दिखाया है। ज्ञान में
मधुर पाठ दिखाया है।
हाँ और राम का कठोर पाठ दिखाया है
जी।
और फिर शास्त्रों में जो इसके जस्ट अपोजिट दिखाया है,
ज्ञान में विकराल रूपधारी दिखाया है कृष्ण को,
मधुर पाठ
है,
मधुर पाठ दिखाया
है। शास्त्रों में विरोधी पाठ दिखाया है
राम को,
हाँ ये कहो कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया है और कृष्ण को मर्यादा हीन दिखाया है। कृष्ण को 16,108 रानियां और राम को सिर्फ एक में मर्यादा बांध करके जीवन जिया। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान में कहाँ उल्टा हो गया, ज्ञान में उल्टा कहाँ दिखाई पड़ रहा है? क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को सब कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है। भारतवासियों का सारा वांग्मय सारा उल्टा दिखाई पड़ता है। क्या उल्टा दिखाई पड़ा?
मधुर पाठ दिखाते हैं।
हाँ, क्या मधुर पाठ और राम का क्या खराब पाठ दिखाते हैं? और यहाँ उल्टा कैसे हो गया?
नहीं, यहाँ माँ बाप का हिसाब से बोलो।
है
राम को 16,000 जहाँ ये ज्ञान में हो,
वो राम का पार्ट है या शिव का पार्ट है? तुम राम का देखते हो, देहधारी का देखते हो या शिव का देखते हो? अरे तुम राम तो देहधारी है कि वो बेहद का रूहानी बाप है? राम बेहद का रूहानी बाप है? अरे राम तो जिस्मानी बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का जिस्मानी बाप। तुम किसको देखते हो? उसमें जो पार्ट बजाने वाला है, जो पतित पावन है, वो कौन सी आत्मा है? रूहानी बाप की आत्मा है ना? तो शिव को देखना चाहिए या सब को देखना चाहिए? आखिरी जन्म में वो सब हो जाता है या शिव बन करके रहता है? सब हो जाता है, पतित हो जाता है, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर मैं उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। तो फूल अंत समय का गायन है या आदि और मध्य का गायन है? अभी क्या कहेंगे?
है वो भी तो एकलव्य है ना?
एकलव्य है, हाँ एकलव्य है, वो तो ठीक बात।
यादगार तो राम कृष्ण
एकलव्य की तो है, एक को प्यार करने वाली तो है, लेकिन पतित है या पावन है? क्या है
यादगार तो राम कृष्ण
का बात गलत बोलते है ना? जो साकार राम है वो तो एकलव्य है, एक को ही तो प्यार करेंगे।
लेकिन पतित है या पावन है?
पहले पतित है,
पतित है ना? तो वही बात यहाँ आई सामने कि मर्यादा पुरुषोत्तम का जो पार्ट है वो राम वाली आत्मा नहीं बजाती है संगम युग में। क्या त्रेता का जो राम बताया गया है, जिसको कहा फेलियर, वो राम वाली आत्मा नहीं है? सुनो, वो जो सीता वाली आत्मा है अव्वल नंबर, वो अभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाय रही है। क्या उसकी मर्यादा में एक के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है? तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि पार्ट बजाने वाला पतित है या एवर प्योर है, है? एवर प्योर पार्ट बजा रहा है। अगर बुद्धि में ये आया, हम ब्रह्मा की गोद में जाते हैं। क्या गोद में तो जाते हैं, लेकिन अगर बुद्धि में आया कि हम ब्रह्मा की गोद में जाते हैं तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? तो दुर्गति हो जाती है। अगर ये बुद्धि में आया कि हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं तो दुर्गति होगी सदगति होगी? सदगति होगी। तो क्या बुद्धि मिलाना चाहिए? है नहीं, नहीं अभी जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें
और मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद हमने कहा, पीछे कोई ने कहा,
पीछे हाथ झाड़ के भाग खड़े हुए। अच्छा चलो दूसरे ने कहा। हाँ
अपने स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो अपना अपना जो पढ़ेगा बच्चा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाता है। लेकिन आपने एक कैसेट में बोला कि पूरे रूपी बच्चों को अगर जो पंडा ले जाता है तो उसकी शिक्षा पंडा को भी मिलेगी। पंडा को भी उसकी शिक्षा मिलती है, बोले धतूरे रूपी बच्चों को तो ले जाते
हैं,
तो उसके पंडा को क्यों शिक्षा मिलती है बाबा?
शिक्षा मिलना खराब बात है क्या?
लेकिन वो तो उनको तो नहीं पता, वो तो उनके उधार करने के लिए ले जा रहे हैं।
पंडा उतार करने वाला होता है जो पार्टी ले जाता है। बाबा से मिलाना है,
बाबा को मिलाने,
बाबा से मिलाने के लिए ले जाने की जरूरत थोड़ी ही होती है। बाबा से मिलाने के लिए तो आत्मा को ज्ञान देने की जरूरत होती है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा वो हजारों मील दूर बैठा हुआ होगा तो भी बाबा से उसी समय मिल लेता है। उसकी बुद्धि में बात बैठ जाती है कि हमारा बाबा यहाँ आया हुआ है, और उसको कोई नबी ले जाएगा तो भी वहां पहुंच जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और कोई देहधारी पंडा नहीं होता है, शिक्षा माना अच्छी बात होती है, शिक्षा खराब चीज नहीं होती है। तो अगर ले जाने वाला भी उसको भी शिक्षा मिले तो खराब बात क्या है? सजा की बात करो ना, शिक्षा की बात नहीं। अगर कोई विकारी मनुष्यों को ले जाते हैं जिन्होंने बाप को पहचाना नहीं, और वहाँ ले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कुदृष्टि डाली, विकृत कर्म किया बाबा के घर में जाकर के, तो ले जाने वालों के ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा?
अहिल्या
हाँ, सांप को ले गए, कहाँ ले आए, किसको ले आए? जो सांप जैसी आत्माएं हैं, कामी क्रोधी, ऐसी आत्माओं को पकड़ के ले आए। जानते भी हैं कि हाँ ये विकारी हैं, इन्होंने धारणा पूरी नहीं की है, फिर भी ले आए, तो पत्थर बुद्धि बनेंगे, माने उनको सजा मिल जाती है।
कन्या कुमारी में क्या अंतर है बाबा?
कुमारी है सुकन्या है, कन्या है सुकुमारी है।
उनसे खाना खा सकते क्या?
जिन्होंने ज्ञान लेकर के छोड़ दिया वो शूद्र बन गए या ब्राह्मण बने हुए? तो उनके हाथ का भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। हाँ जी,
बाबा आज ये कैसेट में बोला एक ही जन्म में पहचानते हैं, एक ही जन्म में भूल जाते हैं बाबू को, यहाँ तक भूल जाती है। जगन्नाथ मंदिर में दो भुजाएं थे वो भी कट गए, जब बहुत तमोप्रधान बन जाती है तो बाप को पूरा भूल जाता है।
जी,
जब तक भूल जाता है तब तक माला का मंत्र खिसक जाता है, जब तक दोबारा पहचानते हैं तब तक
तब तक माला का मंत्र बन सके।
ये भी बोला जब वो सबसे ज्यादा प्रकृति से विनाश होता है ब्राह्मणों का दुनिया का, तो विनाश होते तो आठ ही बचेंगे बताया, तो आठ बचेंगे तो वो सहयोग नहीं देंगे क्या?
जो आठ बचेंगे वो भी नंबर वार बचेंगे, एक जैसे नहीं बचते हैं। और जहाँ तक सहयोग देने की बात है, वो आठ तो आज से अंत तक अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग देते हैं, लेकिन संगम युग में जैसे सहयोगिनी शक्ति मानी जाती है, जो माता बनाई जाती है पहली रचना, वो तो जीवन भर की जीवन संगिनी होती है ना, तो ज्यादा सहयोगी कौन माना जाता है, जीवन संगनी या बच्चा? जीवन संगनी ज्यादा सहयोगी है। जो ज्यादा सहयोग देती है, ज्यादा जीवन भर रही है, जिसके लिए बोला है कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते, वो भी तिरक जाते हैं। तो सहयोगी की बात है, जो विशेष सहयोगी हैं, कौन हुए विशेष सहयोगी? नारायण के, लक्ष्मी और जगदम्बा, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। भले पावरफुल ऐसे नहीं है जो आज से लेकर के अंत तक सहयोग देते रहे, थोड़ा थोड़ा सहयोग करने वाला भी आज से अंत तक सहयोगी बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। और एक ऐसा है जो सहयोग तो बहुत दिया लेकिन आज से अंत तक सहयोग नहीं बन सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि पहचान की कमी रह गई। तो अष्ट देवों में ये अंतर है, वो जितना पहचानते हैं बाप को उतना जगदम्बा और लक्ष्मी भी बाप को पहचान नहीं पाते, और जितना जल्दी पहचानते हैं, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं और जो मुख्य भुजाएं हैं उनमें एक भुजा तो राइट हैंड ऐसी है जो जल्दी पहचानती ही नहीं, और दूसरी भुजा जल्दी पहचानती भी है तो फिर तिरक जाती है माया की परीक्षा में। नंबर वार
एक से लाना ही
है। फिनिशिंग जो है उनमें फिनिशिंग का अंतर है, वो थोड़े समय के लिए, और आत्माएं लंबे समय के लिए निश्चय में आती हैं।
इसका मतलब है बाप का छोड़ना नहीं है ना, जगन्नाथ का हाथ दिखा कर नहीं कहते हैं, अष्ट छोड़ कर देते
हैं। अष्ट देव जो है उनके भी नंबर बनने हैं कि नहीं बनने हैं?
वो एक सेकंड का याद कर
रहे, वो अगर नंबर नहीं बनेंगे तो नंबर बनने के लिए माया जो है वो उनको नीचे गिराएगी या नहीं गिराएगी? ऐसा अहंकार कोई न करे, मुरली में बोला कि माया हमको नहीं पछाड़ सकती, चाहे वो अष्टदेव हो और चाहे वो रामकृष्ण की आत्माएं हो, माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। और
माया जो है ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ते और शंकर सॉरी विष्णु को भी नहीं छोड़ते, शंकर जी को दाढ़ी।
ये कौन सी मुरली में बोला गया शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे?
सिर्फ दाढ़ी को
कौन सी मुरली में बोला है? है? ये तो भक्ति मार्ग की कहावत है, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। हाँ जी, तो दाढ़ी हिलाया जाए उखाड़ ले जाए तो अच्छी बात है, खराब बात है? है? हाँ जी,
जो स्वयं संसार में प्रत्यक्ष होते हैं उनको कोई प्रत्यक्ष न करे, वो स्वयं भोग है। फिर ये भी कहा गया है संशो स्वादर, ऐसे क्यों कहा?
वो जब जो मुख्य भुजाएं हैं वो भी सहयोगी बनकर के नहीं रह पाती, टूट जाती है, तो फिर कौन उद्धार करता है? तो जब जो दो मुख्य भुजाएं हैं वो ही सहयोगी बनकर के नहीं रह पाई तो फिर वो स्वयं ही अपना सहयोग खुद ही करता है ना, कि कोई दूसरा करता है? इसलिए खुदा कहा जाता है। माने और आत्माएं हिम्मत हार जाती है माया के सामने, एक आत्मा ऐसी है जो अपने स्वरूप को जब पहचान लेती है तो वो हिम्मत हारने वाली नहीं है, भले अकेली रह जाए तो भी बाप क्या करेगा, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप बनता है।
भारत का बहुत प्राचीन द्वादश ज्योतिर्लिंग यादगार है ना,
हाँ जी,
इसमें कई जगह में और शिवलिंग है जलागारी के अंदर टिका है, इसका अर्थ क्या है बाबा?
जलागारी किसे कहा जाता है? जंगल को जलागारी कहा जाता है। लिंग किसको कहा जाता है? अरे पूछते हो फिर जवाब भी, जो पूछा जाए वो पूरी बात क्लियर भी तो करो। लिंग किसको कहा जाता है? लिंग शिव को कहा जाता है। तुम्हारे पास लिंग है कि नहीं है? तो तुम्हारा उसकी पूजा करते हो है? तुम्हारे पास जो लिंग है उसको शिव कहेंगे है? तो यादगार है इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो कल्याणकारी है, शिव लिंग रूप में भी कल्याणकारी है। तो दुनिया में जो मनुष्य है वो लिंग से जो भी कार्य करते हैं वो दुख देने का कार्य करते हैं क्या? हाँ, लेकिन वो लिंग ऐसा है जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है वो लिंग दुख नहीं देता, वो सुख ही देता है।
ठीक है बाबा, लेकिन कई जगह में ऊपर दिखाया है, जलागारी से ऊपर दिखाया है, जलागारी के अंदर दिखाया है शिव लिंग का।
तुम्हारा लिंग ऊपर नीचे होता है कि नहीं है? तुम्हारा लिंग ऊपर नीचे होता है कि नहीं? अंदर होता है बाहर होता है कि नहीं? तो दुख देता है कि नहीं? इसलिए तुमको शिव नहीं कहेंगे, उसको शिव कहा जाता है। शिव माने कल्याणकारी। वो अकल्याणकारी किसी हालत में, किसी कर्म में, किसी वाचा में, किसी वाइब्रेशन में नहीं हो सकता। ठीक है,
ठीक है। सच्चे
ब्रह्म बाबा शरीर छोड़ गई, अभी है ओम राधे हैं? वो कैसे करेंगे? हाँ, वो किसी तन में प्रवेश करके नई दुनिया की स्वर्ग की उद्घाटन का काम कर सकती है। कोई कन्या माता ऐसी निमित्त बनती है जिनमें मम्मा प्रवेश करती है और ब्रह्मा बाबा भी प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं उसको जगदम्बा कहते हैं, और छोटी मम्मा जिसमें प्रवेश करते हैं वो छोटी माँ लक्ष्मी कही जाती है। जो भी राज परिवार होते हैं तो उनमें एक राजमाता होती है, एक राज लक्ष्मी होती है। ज्यादा ऊंचा पद किसको, पदवी किसको दी जाती है? राजमाता को। लेकिन सारा कारोबार कौन संभालती है? राज लक्ष्मी। तो जो नई दुनिया का संगठन बनेगा उसमें सारा कारोबार कौन संभालेगी? राजलक्ष्मी। उसमें संभालने की क्षमता है, लेकिन ऊंचे पद पर कौन आसीन होगी? राजमाता माने जगदम्बा, माने ओम राधे। वो तो शरीर छोड़ गई, लेकिन ओम राधे छोटी मम्मी में प्रवेश होती है और बड़ी माँ ब्रह्मा बड़ी माँ में माने जगदम्बा में प्रवेश होगी कार्य करता है। और
समझ में दोनों युगल ज्ञान में चलते हैं ना, उनके घर में वे चित्र डाल सकते हैं?
क्यों नहीं डाल सकते? किसने मना किया? चित्र जो युगल एडवांस में चलते हैं उनके घर में चित्र क्यों नहीं लगा सकते?
सब चित्र डालते हैं ना, सब पांच चित्र डाल सकते हैं या लक्ष्मी नारायण एक ही?
ये तो किसी ने आपको कंपल्सन किया नहीं, क्यों पूछ रहे हैं? किसी ने मना किया है चित्र लगाने के लिए?
पूछ रहे
हैं। क्यों पूछेंगे? हाँ जी, चित्र लगाइए। दोनों ज्ञान में चलते हैं, पति पत्नी एडवांस में भी चलते हैं, तो जो एडवांस के चित्र हैं उनको घर में लगाइए। हाँ जी
बाबा, एक कैसेट में बोला गया है शिखंडी के बारे में।
हाँ।
और शिखंडी जो है स्त्री का पार्ट भी बजाते हैं और पुरुष का पार्ट भी बजाते हैं, लेकिन रुद्रमाला का मंडो में जो है जगदम्बा जो है नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाई ना।
हाँ, नहीं बन पाई। अभी क्या रिजल्ट आउट हो गया?
नहीं,
आपने रिजल्ट कैसे आउट कर दिया?
नहीं बाबा, रुद्रमाला का मंडका है ना। रुद्रमाला का मंडका है ना।
नहीं मना, लक्ष्मी बन नहीं सकेगी, ऐसा पार्ट बजा जाती है माया से पछाड़ खाने के बाद, ऐसा पार्ट बजा जाती है जिससे वो नारी से लक्ष्मी का पद नहीं पाती।
लेकिन लिंग चेंज होना अच्छी बात है क्या? ऐसा पूछा है।
सुनो, चेंज होना अच्छी बात है तो तुम्हारा अगले जन्म में चेंज होगा कि नहीं? अच्छी बात है या खराब बात है? है? अरे अगले जन्म में, हर एक अगले जन्म में लिंग चेंज होता है या नहीं होता है?
होता है।
होता है तो अच्छी बात है खराब बात है? है? अरे इसमें खराब बात क्या है?
नहीं बाबा।
हाँ,
रुद्रमाला का मंडप में जो स्त्री रूप में है,
स्त्री रूप में है तो खराब रूप है या अच्छा रूप है? दुनिया भी दृष्टि से खराब रूप है, लेकिन भगवान ने जिनको आगे बढ़ाया है भगवान की दृष्टि में वो श्रेष्ठ है या निष्कष्ट है? श्रेष्ठ है। उनके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है, स्वर्ग के गेट खुलते हैं। और जो दूसरे रूप है उनके अपोजिट वाले, वो स्वर्ग के गेट खोलने के काबिल नहीं है। गेट आउट, तुम हटो यहां से। हाँ जी
बाबा, 2018 में लक्ष्मी नारायण शरीर कंचन काई होंगे बाबा, उस समय क्लास चलता नहीं बाबा?
लक्ष्मी नारायण
शरीर कंचन काय होंगे बाबा?
लक्ष्मी नारायण जो कंचन काया बनेंगे उनका तो देहभान खलास हो गया। जिनका देहभान खलास हो गया उनको पढ़ाई पढ़ने की दरकार है? उनको पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं। बाकी जो दूसरे बचेंगे जिनका देहभान खलास नहीं हुआ होगा या कंचन काया नहीं बनाई होगी, तो उनको पढ़ाई की दरकार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जब तक जीना है तब तक जीना है। माने किस बात में जीना है? देहभान में जब तक जीना है तब तक पीना है। अब कोई भी हो नंबर वन। हाँ जी
बाबा, 108 जो है पूरा बेकार बनेंगे वो ज्ञान के आने के बाद?
पूरा बेकार नहीं बनते हैं, नंबर वार बनते हैं।
नंबर वार बनते हैं ना।
हाँ जी।
वो ज्ञान में आने के बाद बनते हैं या पहले ही बन के रहेंगे या अंत में बनेंगे?
पहले भी बन सकते हैं, बाद में भी बन सकते हैं। बाद में बनेंगे ज्ञान में आने के बाद तो उनको उसका प्रतिफल मिल जाएगा। पहले जो बने हैं ज्ञान में आने से पहले, उसका उनको कोई उजूरा मिलने वाला नहीं। ज्ञान में आने के बाद जो तन से भी बेगर बन जाए, ईश्वरीय सेवा में तन स्वाहा कर दे, धन से भी बेगर बन जाए, ईश्वरीय सेवा में सारा धन लगा दे, तन भी लगा दे धन भी लगा दे, और मन की भी जो पावर है वो सारी ईश्वरीय सेवा में लगा दे, तो उसका भाग्य बनना चाहिए ना। लेकिन ज्ञान में आने से पहले तन भी बर्बाद कर दिया हो, धन भी बर्बाद कर दिया हो, मन भी बर्बाद कर दिया हो, लेकिन किसके पीछे? देहधारियों के पीछे, तो उसका कोई उजूरा नहीं मिलता है।
और बाबा, 8 जो है पूरा परिवार को सरेंडर करेंगे और 108 जो है स्वयं सरेंडर होंगे, इसका मतलब क्या है?
8 पूरे परिवार को सरेंडर करेंगे,
108 स्वयं सरेंडर होंगे।
पूरा परिवार माने क्या? आठ पूरे परिवार को सरेंडर करेंगे, इसका क्या मतलब?
मैंने आज का परिवार है या
वो तो जितने भी ज्ञान में चलने वाले हैं सबके लिए बोल दिया। तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जो भी एडवांस में ज्ञान में चल रहे हैं उनको वरदान मिला हुआ है क्या? तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो सारे ही हो गए। अष्टरत्न की क्या, अष्टदेव की क्या बात है? हाँ, आगे चल के ऐसा ही होगा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे नारायण सरेंडर होकर के अपनी जिंदगी में चलता है, ऐसे 4.5 लाख आत्माएं भी संपूर्ण सरेंडर होकर के माउंट आबू में जाकर के बैठेंगी। धन भी स्वाहा और मन की सारी सेवा स्वाहा। तब कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा। हाँ जी,
लेकिन अष्टदेव के लिए ही क्यों कहा गया है?
ये तो आप कहते हैं कि अष्टदेव अपने पूरे परिवार को सरेंडर करेंगे।
बाबा एक मैं पढ़ी थी।
आप ही तो करेंगे?
नहीं
नहीं करेंगे।
अरे नहीं बाबा, मैं एक ईमेल और लेटर पार्ट में पढ़ी।
अरे ईमेल लेटर छोड़ो, वो अव्यक्त वाणी में ये बात बोली कि नहीं कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा?
चलेगा।
अभी प्रत्यक्षता संसार में नहीं हुई है तो दुनिया को देखते हैं, ज्ञान को उतना समझने की कोशिश नहीं करते। और आगे चल के क्या होगा, सारी दुनिया के सामने बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो उनको अंदर ये फखुर आवेगा ना घरवालों को कि हमने नहीं पहचाना, हमारे घर के अंदर ये आत्मा देखो कितनी श्रेष्ठ है जिसने भगवान को पहचान लिया। तो हम भी आगे बढ़ने चाहिए, हम क्यों पीछे रहे जब हमारे घर में इतनी श्रेष्ठ आत्मा आई हुई है, तो उनमें भी आगे बढ़ने का उमंग आएगा, वो भी अपना तन मन धन अर्पण करेंगे। और
चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा को दिखाते हैं, चंद्रमा कैसे भी पूंछ है अष्टदेव
है,
चंद्रमा से भी पूंछ दिखाते हैं अष्टदेवों को।
हाँ,
चंद्रमा से पूंछ है अष्टदेव
है नहीं तो चंद्रमा के 84 जन्म पूरे होंगे या अष्टदेवों के पूरे 84 जन्म होंगे? जब जिस समय सेवा की है उस समय उसको ऊंचा रखा गया, जब मौका पड़े तो गधे को भी बाप बनाने में क्या हर्ज है, ईश्वरीय सेवा तो होगी ना। गंगा जो है वो आखिरी जन्मों में आके मैली हो जाती है, हो जाती है नहीं, आखिरी जन्मों में आकर के गंगा मैली हो जाती है, उसमें कचरा पड़ने लगता है। अष्टदेव सिर्फ आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिरते हैं, लेकिन आखिरी जन्म में भी ऊंचे उठ जाते हैं। तो अष्टदेव जो है वो आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी बनने वाली आत्मा है, और गंगा क्या बोला है, गंगा के लिए नदियों के लिए क्या बोला है, नदी नाला कब बन जाती है, जब सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी नाला बन जाता है। तो कहां आज से अंत तक सहयोगी बनने वाले और कहां थोड़े समय के लिए सहयोगी बनने वाले, भले थोड़े समय के लिए सहयोगी बनते हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सर पर रख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अष्टदेवों से भी ऊपर हो गए।
जगाएंगे
कहकर ऊंच दिया, यूपी को जगाएंगे, सारे भारत को, दक्षिण भारत को नहीं, तो पार्सलिटी हो गई। और अष्टदेव हैं, अष्टदेव तो सिर्फ दक्षिण भारत की नहीं, उत्तर भारत की बात नहीं, सारी दुनिया के पूर्वज हैं। और आगे
भक्ति का जरा सा क्वेश्चन देता ही है, शंकर को नेत्र तीसरा नेत्र लंबा करते हैं ना, लेकिन वो चित्र में आड़ा में भी है, मतलब तीसरा नेत्र
चित्र किसने बनाए, भक्ति मार्ग के मनुष्यों ने बनाए ना, तो भक्ति मार्ग की मनुष्यों की जो भक्ति युक्त बुद्धि आई वो किसने दी, रावण ने दी। और रावण के रावण की मत पर चलने वाले जो चित्र बनाने वाले हैं उनके चित्रों में हम बुद्धि लगाए तो हमारी बुद्धि का क्या हाल होगा, बताया ना ये चित्र ढेर सारे बनाए हुए हैं माया की मत पर, मुरली में बोला ढेर के ढेर चित्र बनाए हुए, तो माया की मत पर माने रावण की मत पर बनाए गए ना, उनका मनन चिंतन हम क्यों करें। मुरली में तो बाबा ने ऐसा नहीं बोला, बोला बाबा ने नहीं बोला कि वो तीसरा नेत्र खड़ा नहीं होता है, पड़ा हुआ होता है।
इसमें पहले पूछ ले भक्ति का है, बोलना है बोलना है, इसलिए डर के कभी कोई नहीं पता नहीं कैसा तीर मार देंगे।
हम तीर मार देंगे, कैसा तीर मार देंगे,
ऐसा
तीर किसको मारे जाते हैं, दुश्मनों को या दोस्तों को है? क्या लगते हैं, किसी बच्चे को हंसते हंसते खेल में थप्पड़ मार दो तो वो हंसेगा कि रोएगा, या ये कहेगा हमको तीर मार दिया मैं घायल हो गया।
पानी निकलेगा
नहीं, नहीं हंसते हंसते आंखों से पानी कम निकलता है लेकिन रोते रोते ज्यादा निकलता है।
अष्टदेव में आने वाले हैं, अलग से पालना होगी क्या, किसी ने पूछा। तब आपने कहा कि अरे ये कहो उनको सामने बैठ करके मुरली भी सुनने नहीं मिलती
है,
सामने बैठ करके दृष्टि भी नहीं मिलती है, ऐसा आपने जवाब दिया।
ठीक है,
तो अभी जहाँ
पे गीता पाठशाला
में मधुबन में जा रही है,
क्या जा रही है,
बाबा जा रही है, तो वहाँ सम्मुख मिल बैठ करके उनको दृष्टि नहीं मिल रही, आप मुझे सुनने नहीं मिलती,
सेवा करेंगे तो दृष्टि मिलेगी है? अष्टदेव भी सेवा करेंगे चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो,
तो करेंगे।
अगर दूर भी है और सेवा के फील्ड में हो तो उनको दृष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी,
मिलेगी।
24 घंटे सेवा के फील्ड में होंगे तो 24 घंटे दृष्टि मिलेगी, और गीता पाठशालाओं में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ तो अंतकाल की दृष्टि मिलती होगी, जितनी जो सेवा करते होंगे उतनी उनको दृष्टि मिलती होगी, और तीसरे नेत्र की दृष्टि मिलती होगी। एक है विनाशी नेत्रों द्वारा दृष्टि और एक है अविनाशी तीसरे नेत्र के द्वारा दृष्टि, ज्यादा पावरफुल कौन सी है, तो ज्यादा जीत में कौन रहेंगे है? अविनाशी नेत्र वाले ज्यादा जीत में आ जाएंगे। हाँ जी
बाबा, अभी
कैसे
बोली चला
बोला ना, गीता वैल्यू 1 2 3 अभी कैसे तुम्हें बोला, हाँ जी कैसे तुम्हें बोला, ठीक है हाँ बोलो बोलो बोलो,
गीता का वैल्यू 1 2 3 प्रिंटिंग करवाना
हाँ चाहिए,
भाव भाव क्या है,
भाव यही है कि जो नए नए पॉइंट्स निकलते जा रहे हैं उनको क्रम से रखते हुए गीता का वॉल्यूम बनाया जाए, जैसे उन्होंने 18 अध्याय बना दिए ऐसे आप वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 बनाते जाओ और ऐड करते जाओ।
किस बात में लेना है मैटर,
जैसा मैटर हो वैसा उसको विभाजित कर दो,
माने आदि में
जैसे चार चित्रों से संबंधित जो भी मैटर है वो वॉल्यूम 1 में आ गया, सच्ची गीता खंड 1 तैयार हुआ कि नहीं, तो ऐसे ही 2 3 4 5 6 ये वॉल्यूम तैयार होते जाए और नए नए हेडिंग नए नए पॉइंट्स उसमें ऐड होते जाए, उनका क्लेरिफिकेशन भी ऐड होता जाए।
बाबा
हाँ जी,
आप बोला डायरेक्ट कैसेट जो है वो फर्स्ट क्लास,
हाँ जी
टेप है तो सेकंड क्लास,
हाँ जी
प्रिंटिंग जो है थर्ड क्लास है, ट्रेन में भी थर्ड क्लास नहीं है, प्रिंटिंग वाला क्यों पीछे पड़े, प्रिंटिंग का पीछे ऐसा बोल रहे
हैं,
प्रिंटिंग का हाँ मतलब है उसको लेना नहीं बोला ना,
वो दुनिया की सेवा करने के लिए बताया ना, हम बच्चों की सेवा करने के लिए बताया है? जो वॉल्यूम गीता की छपाने के लिए बताया है वो दुनिया वालों के लिए बताया है हमारे लिए बताया है, वो तो दुनिया वालों की सेवा के लिए बताया, हमें तो माल डायरेक्ट मिल रहा है फर्स्ट क्लास डायरेक्ट मुख से मिल रहा है, तो हम उसकी परवाह क्यों करेंगे है? और कौन सी सीढ़ी में क्या बोला है, मुख से ही बोला होगा
क्यों नहीं
बोल बोलो
आप बोलेंगे किस सीढ़ी में है, किस में है,
ना हम तो कभी कहा ही नहीं किस सीढ़ी में है किस वंश में है, अगर है तो ये कहेंगे सीढ़ी पेश करो,
चार वर्ण चित्र बनाओ
पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को बनाओ क्या किसका कुमार कुमारी ब्रह्मा कुमार कुमारी वो भी सरेंडर नॉन सरेंडर नहीं और सरेंडर होने के बाद चांडाल नहीं पहले अपने को बनाएंगे तभी तो कुछ बना सकेंगे तभी तो रिजल्ट निकलेगा कैसे निकल आएगा अरे अरे हाँ ना तो करो हाँ जी
हाँ हम बाबा का मुख से जो भी सुनते हैं पूरा कैच नहीं कर पाते लेकिन बुक में लिख के बाद में पढ़ते हैं ना वो भी तरस होता है
बाबा के मुख से जो कुछ निकलता है वो सीडी में और कैसेट में बार बार सुनने के लिए नहीं आता है
आता
वो नहीं सुन सकते पढ़ सकते हैं
नहीं बाबा करेंट नहीं रहते है कोई हमें आना
ठंड नहीं आता है तो आजकल बैटरी निकली हुई है पैसे है किसके लिए
लिख के नहीं पढ़ सकते हैं
लिख के नहीं पढ़ ये किसने मना किया कि लिख के नहीं पढ़ सकते हैं बताया कि अगर डायरेक्ट मिलता है माल तो डायरेक्ट लेने में क्या हर्ज है अगर डायरेक्ट नहीं भी मिलता है तो वीसीडी में देखो सेकंड क्लास मिल जाएगा और नहीं तो थर्ड क्लास ये तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है
नहीं मतलब कोई को वो भी नहीं मिलता है ना
क्या नहीं मिलता है
घर में कैसेट लगा के बांदेली माता जो है घर में कैसेट लगा के नहीं सुन सकते है सब
बांदेली असल में बांदेली रहते हैं बांधने वाला उनके सर के ऊपर सवार रहता है कि 24 घंटे है और बांदेली है ज्यादा ही बंधन महसूस होता है कोई धर्म के काम पर ज्यादा ही कोई रोक लगाता है तो कोर्ट किस लिए बना हुआ है ये कोर्ट किस लिए बने हुए हैं कोर्ट में ये स्वतंत्रता है कि कोई भी किसी धर्म पर चल सकता है कोई किसी को रोक नहीं सकता किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता चरित्र के ऊपर कोई दोष उंगली नहीं उठा सकता अगर पति ज्यादा उंगली उठाता है ज्यादा बंधन डालता है तो कोर्ट में चढ़ जाओगी हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता गलत बात है क्या कोई गलत बात नहीं क्या हुआ
इतना नाश्ते में वहाँ पत्नी कौन है
आप तो हैं
मेरा पति ऐसा पूछने लगा
आपको बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं
अभी आपने तो बोला रात में अच्छा से बैठ के क्वेश्चन आए
हैं
क्या करूँ है ना स्टार्टिंग में रात में अच्छा से बैठना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है बोले
याद में बैठे ऐसे ना
तो बैठा आ गए मैं क्या करूँ
अच्छे से याद माने अभी बिचारी याद अच्छे से याद मालूम किसे कहा जाता है
एक से
एक की याद कोई दूसरे की याद ना आए उसको कहते हैं अच्छे से याद उसकी मालूम स्टेज क्या होगी उसको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहेगी
जब तक बोलते रहे थे वो तो उसमें आए नहीं हम लोग
हैं
वो स्टेज तो आए नहीं ना कोई भी
नहीं
जब तक जितना स्टेज है उतना स्टेज तक ही याद कर पाएंगे
स्टेज जो है जितना गुड़ डालेंगे उतनी स्टेज आएगी आएगी ना तो गुड़ डालना माने तन मन धन अर्पण करना
बाबा टेंथ पढ़े तो टेंथ का ज्ञान
रुको तो तन मन धन अर्पण करना माने गुड़ डालना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना जितना जिसने तन मन धन अर्पण में हुआ होगा उतना वो पक्का दर्पण बनेगा दर्पण माने क्या बन जाएगा ज्ञान का दर्पण बन जाएगा इतना बड़ा ज्ञान का दर्पण बन जाएगा उसे कुछ भी पूछने करने की दरकार नहीं रहेगी
स्टेज आगे आ जाएंगे
आ जाएंगे अच्छा सरेंडर्ड की नहीं आएंगे कुछ नॉन सरेंडर की आएंगे
बोले
थे बताओ पहले पहले सरेंडर के आएंगे कि पहले नॉन सरेंडर के अरे पहले राज परिवार के घराने में आने वाले 16,000 मणके जो है वो सरेंडर बनेंगे कि नॉन सरेंडर बनेंगे जो सरेंडर होंगे जो बनेंगे एक होंगे दिखावटी के सरेंडर और अंदर से विरोधी और दूसरे होते हैं दिखावा कुछ भी नहीं करते लेकिन कोशिश करते हम फुल सरेंडर होकर दिखते हैं। हाँ अभी क्या हुआ?
किस बात से, किस बात में चले, मुझे ही समझ नहीं आया बाबा।
बात समझ नहीं आती अपने मतलब की कोई बात नहीं।
मेरा पांडव से दो
है,
मेरा पांडव से दो, किस बात में, किस बात में चलेगी,
किस बात में, किस बात में चलेगी, जो बात हो रही है उसी में चलेगी।
वही क्या है, भूल गए
है
वो बात।
माना जो बाबा कहते हैं वो बात समझ में नहीं आती, स्मृति में नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चलो।
प्रश्न पूछना
है, प्रश्न भी दो तरह से होते हैं और वो साबित भी हो जाते हैं। एक प्रश्न होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपनी भी जिज्ञासा शांत करने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, बच्चा बुद्धि होकर के पूछते हैं। और एक होता है डाउन करने के लिए, किसको डाउन करेंगे, जिसको मनुष्य समझेंगे उसको डाउन करेंगे, जिसको मनुष्य समझेंगे उसको छोड़ के भागेंगे, तलाक देंगे, जिसको भगवान समझेंगे उसको छोड़ के भागेंगे, भागेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता
बाबा। दुनिया में कोई भी बाबा को डाउन कर नहीं सकता।
वो तो ठीक बात है, वो तो सही बात है, कोई डाउन नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश तो करते हैं। और
बाबा, हम बाबा से जो बाबा को, बाबा का सामने जब आते हैं, जो पूछना चाहते हैं वो पूछ नहीं सकते।
हाँ।
वो दूसरी आ जाता है, इसका मतलब क्या है?
क्या मतलब, कंसंट्रेशन सही नहीं है। जो बंदर होता है ना, और इधर देखता है फिर इधर देखता है, फिर से इधर देखता है। कौए की भी ऐसी आदत होती है, अभी यूं देखेगा, अभी यूं करेगा। तो अब बाबा आया हुआ है बंदर से बंदर लाइक बनाने के लिए, तो बन जाएंगे, उम्मीद रखो।
बाबा, साधु संन्यासी मुनि ऋषि तपस्वी सारी एक ही कटे करी
है।
साधु मुनि ऋषि तपस्वी सारी एक ही कटे करी।
एक ही कैटेगरी माना,
मैंने एक ही।
साधु उनको कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं, लेकिन अपनी मत, मन मत पर। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी साधु हैं, वो भी इंद्रियों की साधना करते हैं। बाबा कहते हैं बल साथ में सो जाओ, अपनी जांच करो, इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। तो उनको साधु कहेंगे या सवाधु कहेंगे? अगर दिल के अंदर सफाई है तो उनको साधु ही कहा जाएगा ना। तो बेहद की दुनिया में भी ब्राह्मणों में साधु है और बाहर की दुनिया में भी साधु है, लेकिन वो साधु अपनी मनमत के आधार पर और मनुष्यों की मत पर के आधार पर साधु बनते हैं, और यहाँ श्रीमत के आधार पर साधु बनते हैं। और मुनि कहते हैं जो मनन चिंतन मंथन करता है, मन का उपयोग करता है। कोई भी कदम बढ़ाएंगे पहले मन में सोच लेंगे, इस बात को, इस काम को बाबा पसंद करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद कदम बढ़ाएंगे। तो मन का उपयोग किया ना, तो उसको कहेंगे मुनि। और क्या बताया? ऋषि। ऋषि माना जो अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, इंद्रियों को पवित्र बनाते हैं, माने पवित्र को ऋषि कहा जाता है। इसके आधार पर नाम पड़ा है भक्ति मार्ग में ऋषिकेश। तो यहाँ तो ब्राह्मण सारे ही ऋषि हैं, जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं, पवित्रता का ही पुरुषार्थ है ना मुख्य, तो सारे ऋषि हैं। जो आत्म की स्थिति में रहने की तपस्या करते हैं वो है बेहद के तपस्वी, और जो देह की स्थिति में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करते हैं, जैसे उल्टे लटक जाते हैं, एक पांव पे खड़े हो जाते हैं, तो वो देह भान के तपस्वी हैं। वो देह धारण की तपस्या करना मनुष्य गुरु सिखाते हैं, और ये आत्माभान है क्या, आत्माभिमान की तपस्या में टिकना शिव बाबा सिखाते हैं। आत्मिक स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है, देवान में आना उसको तपस्या नहीं कहेंगे, तपस्या भंग करना कहेंगे। और
बाबा सीढ़ी डालते हैं
है?
पूछ रही है वो ज्ञान में चल रही है और उनकी युगल नहीं चल रहा है तो वो घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा सकते
जो ज्ञान में चल रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं लगा सकते
उनकी युगल नहीं चल रहा है
हाँ तो भी
तो लगा सकते हैं
अगर उनके युगल को कोई ऐतराज नहीं है तो क्यों नहीं लगा सकते अगर ऐतराज है तो अपने मन के अंदर तो याद कर सकते हैं मन के अंदर तो चित्र है कोई नहीं निकाल पाएगा हाँ जी
बाबा सीढ़ी डालते हैं ना उसका कारण कोई नहीं जानते हिंदी उन माता उनको कन्नड़ में ट्रांसलेशन करके बोल सकते हैं
उनको हिंदी नहीं आती है कन्नड़ा ही आती है तो कन्नड़ा में ही उनको समझाना पड़ेगा इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं बच्चों को ढेर सारी भाषाएं सीखनी चाहिए
वो नहीं सीख पाएंगे
है
वो नहीं सीख
चलो नहीं सीख पाएंगे तो आप उनको हिंदी में या कन्नड़ में तो समझा सकते हैं और
जैसे हमने बोला है ना प्रत्येक दुनिया में कोई भी पावन नहीं बनाते नहीं रहते और पावन दुनिया में कोई भी पतित नहीं रहते
बराबर
और एक ऐसे में बोला है अगर ये कलयुग की दुनिया में अगर कोई भी पवित्र नहीं रहेगा तो नरक की दुनिया में चले जाता है,
है?
अगर कोई ये पवित्र मैंने कलयुग की दुनिया पवित्रता के आधार पर ही टिकी हुई है तो कोई पवित्र होगा ना ऐसा आत्मा फिर कैसे बोला कोई भी पवित्र नहीं रहते पतित दुनिया
पवित्रता और अपवित्रता ये भी दोनों में परसेंटेज होता है या नहीं होता है, है? परसेंटेज तो होता है तो परसेंटेज के आधार पर कोई आत्मा ऐसी है जो दूसरी दुनिया बाहर की जो दुनिया के लोग हैं उनके मुकाबले कहीं बहुत पावन है इसलिए दुनिया टिकी हुई वो अव्वल नंबर पवित्र है दुनिया के मुकाबले बन पतित दुनिया है पतित दुनिया में सब पतित है ऐसा एक भी नहीं है जिसका मन अपवित्र संकल्प न चलाता हो ऐसा एक भी नहीं है जिसकी दृष्टि कभी अपवित्र विचारी न बनती हो लेकिन परसेंटेज वाले औरों की दृष्टि वृत्ति में ज्यादा विचार आता होगा उनकी दृष्टि वृत्ति में विचार उतना नहीं आता होगा और आता भी होगा तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे
हम कैसे में बोला विजय मामा को आह्वान करना मतलब छोटी मम्मी को आह्वान करना बड़ी मम्मी को योगदान देना बोला है तो योगदान देने समय क्या संकल्प करना और आह्वान करने समय क्या संकल्प करना
योगदान देने का मतलब यह है स्नेह है प्रकृति को स्नेह से परिवर्तन किया जा सकता है प्रकृति को और कोई उपाय नहीं है जिसके आधार पर परिवर्तन किया जा सके और जो विजय माला है माला माला माने संगठन है प्योरिटी का संगठन है उन प्योरिटी की संगठित हुई आत्माओं को आवाहन करना है ताकि उनके आधार पर जो रुद्रमाला के मणके हैं वो सही पवित्र बुद्धि से पवित्र वो ले सके मंत्रणा ले सके जैसे राजाएं होते थे तो राजाएं जानते हैं हम तो भिखारी हैं तो फैसला लेने के लिए किसको रखते थे ब्राह्मणों को रखते थे समझते थे ये ब्राह्मण हैं अच्छे इनके संस्कार हैं इनकी पवित्र बुद्धि है इसलिए हमको अच्छी मंत्रणा देंगे ऐसे ही यहां भी ये भी रुद्रमाला के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं लेकिन जन्म जन्मांतर के अपवित्र भी हैं इसलिए बाबा ने बताया जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं और पवित्र रह करके उन्होंने सहयोग भी दिया है उन आत्माओं को आवाहन करो उनका आवाहन करेंगे तो तुमको सफलता मिल जाएगी लेकिन होता उल्टा है रुद्रमाला में ज्यादातर विदेशी हैं विदेशी धर्मों के बीज, तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पड़े हुए हैं, जैसे मुसलमानों के भाई बहनों में प्यार करने के, शादी करने के, तो आपस में ही एक दूसरे को खींचते रहते हैं, तो पतन होगा या उत्थान होगा? पतन होता जा रहा है। और
बाबा शंकर के साथ शंकरी भी होते हैं ना, शंकरी जगदम्बा होते हैं, लेकिन नहीं तो योगिनी बहन होते हैं। शंकर के साथ शंकरी भी होता है ना,
किसी मुरली में बोला है, है?
तो योगेश्वर के साथ योगेश्वर,
योगेश्वर के साथ योगेश्वरी हो सकती है। योगेश्वर जो होंगे और योगेश्वरी जो होंगे, तो वो आपस में भाई बहन होंगे या पति पत्नी का रूप होगा? जब शंकर पार्वती के लिए ही मुरली में बोल दिया कि शंकर पार्वती को युगल मूर्त मणका नहीं कहेंगे, माने वो वर्तमान में अभी पति पत्नी के रूप में नहीं है, किस रूप में है? भाई बहन के रूप में। तो जो रुद्रमाला के आपस में भांति है, उनको किस रूप में देखना चाहिए? अगर स्त्री पुरुष चोला है तो भाई बहन के रूप हो सकते हैं, नहीं तो समझना चाहिए अंदर से ये भाई भाई है। रुद्रमाला के मणके आपस में क्या है? भाई भाई। और
अभी बनशंकरी का रूप में पूजा हो रही है ना, वो योगिनी बहन के ही हो रही है, योगिनी बहन है ना योगेश्वरी।
बाबा कहते हैं कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दिए, तो नई दुनिया में वन या जंगल होगा, यह बगीचा होगा,
जंगल
जंगल होगा, तो जंगली जंगली दिखाई पड़ता है, बगीचा होगा ना, वहाँ वन और जंगल की कहाँ से बात आ गई? योगेश्वर और योगेश्वरी जो कहा गया है वो नई दुनिया के लिए कहा गया है, नई दुनिया के संगठन के लिए कहा गया है, या कांटों के जंगल के लिए कहा गया है? कांटों के जंगल में वन या जंगल होता है, ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है, एक दूसरे को चौंकते रहते हैं, खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। हाँ जी, दिमाग में वही घूम रही। जो जंगल में रहकर के पुरुषार्थ करती है उसको कहते हैं वन शंकरी। कांटों के जंगल में रहने की, पुरुषार्थ करने की आदि है। जैसे तुलसी दो तरह की होती है, कौन सी तुलसी? एक काली और एक गोरी। तो जो काली तुलसी है उसको घर में ला करके रख दो तो सूख जाएगी, क्या? काले पत्तों वाली जो तुलसी है वो घर में पनपेगी नहीं, और जंगल में ले जाके उसे रोप आरोपण कर दो तो सरसब्ज हो जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? हैं? बनशंकरी। शंकर जी कहाँ रहते हैं, घर बना के रहते हैं या जंगल में पहाड़ों पर रहते हैं? जंगल में, वो जंगल ही, वो जंगला। लेकिन अंतर है पुरुषार्थ का, याद की विशेष अंतर है। जो याद का अंतर है वो पद को नीचे ऊपर कर देता है। भले कांटों के जंगल में रहे, भले कीचड़ के अंदर रहे, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी मन बुद्धि ऊंची स्टेज में होनी चाहिए, उपराम होनी चाहिए। इसलिए शंकर को कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। ऐसे तो बद्रीनाथ में भी, बद्रीनाथ में जहां बद्रीनाथ का मंदिर बना हुआ है, वहीं सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है ऊंचा सा, उस पहाड़ पर काली तुलसी है, सारा जंगल काली तुलसी का है। तो उसको क्या कहेंगे? है बनशंकरी।
लेकिन पूजा इतनी पूजा होती है, लेकिन पूजा इतनी पूजा होती है, महिमा पूजा गाय
काली तुलसी की
नहीं, बनशंकरी की।
हाँ, काली तुलसी की उतनी पूजा नहीं होती है, लेकिन गोरी तुलसी की उत्तर भारत में जास्ती पूजा होती है, और दक्षिण भारत में बनशंकरी की मान्यता है।
बाबा मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा, तो बाबा ने कहा है जो
इसका कारण है, दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है। विदेशी ज्यादा तलाक वलाक देते हैं कि उत्तर भारत वाले भारतवासी ज्यादा तलाक देते हैं?
विदेशी
ज्यादा तलाक देते हैं। तो ज्यादा व्यभिचारी कौन हुए? विदेशी। तो बनशंकरी कहाँ की होगी? इसलिए काली तुलसी हो गई और वो गोरी तुलसी है, माने वो घरग्रस्त में रहती है और वो घरग्रस्त पक्का बना के नहीं रह पाती, उसे फिर भी काट होगी जंगल में रहना। और
कन्या माता ये जहाँ गांव से निकलती है वहाँ ही वो उनका यादगार बनते हैं, इसलिए बनशंकरी में बनशंकरी।
ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जिस गांव से निकलती है वहीं यादगार बनता है। ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ ढेर सारी देवियों के मंदिर है, तो क्या वो देवियाँ उन गांव में जाकर के उन देवियों ने पाठ बजाए? पार्वती के मंदिर है, लक्ष्मी के मंदिर है, गाँव गाँव में बने हुए, तो हर गांव में जाकर के लक्ष्मी ने पाठ बजाया होगा क्या? ये तो यादगार बना दी।
लेकिन ये बात ठीक नहीं है ना?
है जी। और
बाबा, भारत इतना पावरफुल है फिर भी विदेशों के गुलाम क्यों हो गए हैं? और स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र भी हुआ है, लेकिन विदेशियों की जनसंख्या यहाँ ज्यादा क्यों
है? इसीलिए ज्यादा है के कहते हैं स्वतंत्र हो गए, लेकिन असली स्वतंत्रता धारण नहीं की है। जो गांधी बापू जी हैं भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के, उन्होंने जो स्वतंत्रता सिखाई है वो स्वतंत्रता को जानते हैं। जो असली स्वतंत्रता है जो बापू जी सिखाए रहे हैं वो स्वतंत्रता में नहीं टिकते हैं, इसलिए बंधन में। और विदेशी ज्यादा बंधन में बांधते चले जा रहे हैं।
भारत मुकाबला
बता तो दिया कि जो भारतवासी हैं वो सच्ची स्वतंत्रता के उपासक नहीं है, क्योंकि जानकार नहीं है। जो सच्ची स्वतंत्रता के उपासक हैं, आत्मा को और अपनी इंद्रियों को अपने तंत्र में रखते हैं, तंत्र में रखने का पक्का पुरुषार्थ करते हैं, उनको अधीन रहने की दरकार नहीं है।
वैष्णवी देवी होते हैं क्या?
हाँ,
हाँ,
जगदम्बा क्या
गोरा तुलसी होता है क्या?
हैं?
गोरी तुलसी होती है, जो गोरी तुलसी है वो कौन है? बनशंकरी कौन?
गोरी तुलसी माना घरग्रस्त में रह करके जीवन बिताने वाली, और काली तुलसी माना घरग्रस्त किसी गृहस्थी में फंस करके रहने वाली नहीं। जहाँ भी रहेगी कांटों के बीच में रहेगी, जंगल में रहेगी, कोई घरग्रस्त बना करके नहीं रहेगी। और प्रैक्टिकल जीवन है, है? वैष्णवी देवी, वैष्णवी देवी को कहेंगे?
नहीं, तुलसी कौन है?
वैष्णवी देवी को तो ज्यादा से ज्यादा द्रौपदी कह सकते हैं, वो तो घरग्रस्त में ही रहती। और
बाबा, इससे सहित बच्चों का दिल लेने वाला मैं हूँ।
है?
इससे सहित बच्चों का दिल लेने वाला मैं हो।
हाँ जी, हाँ जी।
मुरली में पहला एक पॉइंट आए ना, तो मतलब क्या है
इसके सहित? इसके माने किसके?
ब्रह्मा के।
ब्रह्मा, ब्रह्मा भी दिल लेने वाला है क्या? ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल भी एक एक का दिल लेने वाला है। क्या दिल लेता है? कि कौन कितना सरेंडर हो सकता है, और मैं भी एक एक की दिल लेने वाला हूँ कि कौन कितना कितना तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों से स्वाहा हो सकता है। उसमें शिव भी है और ब्रह्मा भी है। दोनों ही तौलने वाले हैं। और
जगदम्बा का असु सम्मानी कहा जाता है ना?
हाँ जी।
तो जब विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत बांटा था तो असुर भी घुस करके किया ना?
है?
तो उससे पहले जगदम्बा ने असुर संहार का उनका क्यों नहीं किया?
पहले कैसे करेगी, तब वो विष्णु देवी बनती ही नहीं है। वैष्णवी देवी तो तब बनती है जब ब्रह्मा से विष्णु बने। जब ब्रह्मा की सोल जो है वो ये बुद्धि में बैठा ले कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, वही गीता माता को कंट्रोल करने का अधिकारी है। कृष्ण बच्चा गीता माता को कंट्रोल करने वाला नहीं है। आज की दुनिया में भी पति मर जाता है तो माँ को कौन कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं? बच्चे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम जैसे बताएं वैसे चलो, नहीं तो निकलो घर से बाहर। और
एक बजे से पौने पांच तक
खाना
जाता है या दो बजे से?
तो रात के 12 बजे से ही अमृत वेला शुरू हो जाता है।
9 बजे से 12 बजे तक याद करेंगे तो भी व्यभिचारी याद आएगा
कैसे? ऐसी कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस है तो कोई भी टाइम पर याद करेंगे अच्छी याद आएगी। प्रैक्टिस है तो चौराहे पे जाके बैठ जाओ, स्टेशन पे जाके बैठ जाओ, अच्छी याद आएगी। प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छे से अच्छे स्थान पर जाके बैठ जाओ, याद नहीं आएगी। और
बाबा जो भी ज्ञान में निकलते हैं ना
है?
जो भी ज्ञान में निकलते हैं ना शूटिंग पीरियड में, तो सतो सतो तमन रजो तमो शूटिंग पीरियड चलते रहते हैं ना, तो उसका शूटिंग पीरियड का भी महत्व होना महत्व होते क्या?
नहीं है तो सतो रजो तमो बनते कैसे?
अगर रजो प्रधान शूटिंग चलते रहता है कलयुग के कलयुग में 2002 में जब जो भी आते हैं उनको रजो प्रधान शूटिंग।
ऐसा कुछ बात नहीं, जो जब भी आए उसी समय उनकी सत्व प्रधान स्टेज सरेंडर बुद्धि होते हैं शुरुआत में, और बाद में संघ के रंग में आते आते नीचे गिरने लगते हैं, तामसी हो जाते हैं।
बाबा तो ऐसा आदि में गीता का ट्रांसलेशन लिया
है,
अंत में बोले थे ना,
हाँ जी,
मतलब भक्ति का गीता है, भक्ति का गीता
मुरली की गीता ही, मुरली की गीता जो है वो सच्ची गीता है और उसमें सच्चा क्लेरिफिकेशन है। किसका? जो जो मुरली में जो कुछ बोला है उसमें किसका क्लेरिफिकेशन सच्चा सच्चा दिया है? अरे मैं सार सुनाता हूँ, औरों ने जो गीता के इंटरप्रिटेशन किए हैं वो विस्तार में ले गए हैं और सार उड़ा दिया है, और मैं तो किसका सार सुनाता हूँ? वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तो यहाँ भी जो सच्ची गीता निकलेगी वो सच्ची गीता में ऐसे क्लेरिफिकेशन निकलेंगे जो जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसके भी सच्चे सच्चे अर्थ निकल पड़ेंगे। हाँ जी, तो अंत तक पीते ही रहेंगे। दुनिया वाले फिर भी गीता को महत्व देंगे, मुरली को उतना महत्व नहीं दे पाएंगे क्योंकि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। वही गीता जब उसका क्लेरिफिकेशन सही निकलेगा तो फिदा हो जाएंगे। और
राजा दुष्मन और रानी शकुंतला जिसके संतान है भारत, उनके नाम पर भारत पड़ा
है जी,
उनका पाठ कौन पाठ?
दुष्यंत और उसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। दुष्यंत माने दोषों का अंत करने वाला, पापों का अंत करने वाला, और शकुंतला जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाले शकुनी है। शकुनी माने पक्षी, ऊंची स्टेज में उड़ने वाले पक्षी हैं, उनके तले में रहने वाली माने उनके संरक्षण में रहने वाली। कौन? ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाले कौन है, कौन से पक्षी हैं? अरे मंदिर में कौन से पक्षी दिखाए गए हैं? शिव के मंदिर में हैं तोते हैं। तो ऐसे तोतों के ज्ञान योग के पंखों के अंदर माना छत्र छाया में जो पलने वाली है वो कौन है? शकुंतला। हाँ जी वैष्णो देवी, वो आदि से अंत तक पलती है। जगदम्बा आदि से अंत तक नहीं, अंत तक नहीं पलती। हाँ जी,
और उनकी संतान भारत।
हाँ जी, हाँ जी, भरत की संतान भारत। और
कृष्ण और राधा का जन्म जब होता है तब 550 करोड़ की दुनिया होती है।
नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा दूंगा, जैसे यज्ञ के आदि में सैंपल बना के दिया। क्या सैंपल था? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी, और सागर के कंठे पर कराची में वो ब्राह्मणों का संगठन बड़े आराम से रहा पड़ा था। तो नरक के बीच स्वर्ग का सैंपल बन गया, वो था आदि का छोटा रूप और अंत में होगा बड़ा रूप। तो 500 करोड़ की दुनिया रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए?
हैं? पर 500 करोड़ दुनिया में सब हर तरह के भिखारी मनुष्य रहते।
अरे वो जो नई दुनिया का संगठन बनेगा वो 500 करोड़ की दुनिया के अंदर ही बनेगा या परमधाम में जाके बनेगा? कहाँ बनेगा?
500 करोड़ के अंदर ही बनेगा।
500 करोड़ के अंदर ही कोई ऐसी दुनिया गुप्त होगी जिसमें बाहर की दुनिया के लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जो मुरली में बोला ये पांडवों का किला ऐसा संगठन रूपी किला बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव रख नहीं सकेगा, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? भिखारी दुनिया के बीच ही बनेगा। हाँ जी
बाबा, कलयुग का एंडिंग
सत्युग
का
स्टार्ट
दोनों का सामने करते है ना? हाँ जी, लेकिन जो बीच पीरियड लिया पूरा कलयुग में ही दिखाया,
सत्युग
में दिखाया नहीं।
हाँ,
दोनों में भाव को लेना है ना, मतलब भाग लेना है ना,
आधा आधा हिस्सा लेना है,
संघ भी लेना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है।
हाँ,
जो है लेकिन केवल कलयुग में ही है।
हाँ, सत्युग में थोड़ा हिस्सा है ना,
उसमें ठीक है,
अंश मात्र थोड़ा हिस्सा है ना। अरे 18 साल का हिस्सा है कि नहीं है? 18 पंजे 18 × 5 कितना हुआ? 95 हुआ, उससे भी ज्यादा हिस्सा। वो नई दुनिया का बचता है कि नहीं? वो भी सब के लिए नहीं, जो नई दुनिया का हिस्सा जो भी दिखाया जाएगा तीर के रूप में वो थोड़ों के लिए दिखाया गया है या सब के लिए? थोड़ों के लिए दिखाया गया। बाकी 500 करोड़ जो परिवर्तन होकर के नई दुनिया बनेगी वो कब बनेगी? 500 करोड़ सब परमधाम पहुंच जाए और थोड़ी सी आत्माएं स्वर्ग की दुनिया में अनुभव करें वो कब बनेगी? 2036 में। तो ठीक दिखाया या गलत दिखाया? अरे हाँ ना तो करो। हाँ जी, वो पूरा भाग जो दोनों तीर दिखाए हैं वो कलयुग के अंदर दिखाए हैं, वो ठीक दिखाए। हाँ जी, और
बाप के साथ सूर्यवंशी फेल हो चले गए बोले थे ना?
हाँ जी,
वो कितने करोड़ की बात?
वो सारे ही 2.25 लाख है।
हमारे इतना लोग जानते
हैं, ज्ञान में आने से क्या संदेश लिया और चले गए? वो नहीं है, सिंध हैदराबाद की संख्या 9 लाख थी, उसमें से जो 2.25 लाख थे जो सिर्फ ज्ञान लिया संदेश लिया और चले गए वो उस लिस्ट में नहीं आएंगे। संदेश लेने वाले प्रजा बनेंगे या नहीं बनेंगे? बस वो भी आ गए।